जबकि हिरण्यकश्यप का वध किया भगवान ने नृसिंह जी ने, तो कहा जी आप कुछ वर मांग लो, हमारे आने में विलंब हो गया, पहले आना चाहिए। वो उनकी गोदी में बैठ गए, बोले जी मैं बनिया नहीं। बनिया क्या करता है? जैसा भी बनिया होगा वो कोई चीज लेता है, उसके बदले में कोई चीज देता है। पैसा ले लेगा, कोई चीज लेगा, उसके बदले में कोई चीज देगा। दिखलाएगा बढ़िया माल और देगा कैसा? घटिया माल। और घटिया माल में भी जरा डंडी मार लेगा। और यदि बनिया और है वह सच्चा तो बाप का बच्चा नहीं। बनिए के लिए कहा गया, कैसा बनिया? यदि बाप का बेटा यदि है तो कैसा होगा? वो सच्चा नहीं रह सकता, कुछ गड़बड़ी करेगा हेर फेर। और यदि सच्चा तो कहा जी वो बनिया का सच्चा बेटा नहीं, वो दूसरे का बेटा था। तो मैं प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं बनिया का बेटा नहीं, मैं बनिया नहीं हूं, लेन देन के लिए आपका भजन नहीं किया, मैंने तो आपको प्रसन्न करने के लिए हमने किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे अंदर में कुछ गड़बड़ी है, आप कृपा करके हमको यही वर दीजिए, हमारे मांगने की कुछ इच्छा हो तो वो सब समाप्त हो जाए, कोई भी मांगने की इच्छा आपसे न रहे। कहे तो मैं तो और प्रसन्न हुआ, तुम जरूर कुछ वर मांगो, हमारा दर्शन अमोघ है, जरूर फल होगा, भगवान का दर्शन जरूर है, चाहे जिस रूप में आप कीजिए, कुछ न कुछ फल जो चाहते हैं संसारिक भी चाहते हैं तो जरूर देगा, किंतु बड़ा दुखी होकर के देता है। तो प्रहलाद महाराज जी की परीक्षा ले रहे हैं, कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा जैसे यदि आप बार बार मुझे कहते हैं तो यही दीजिए, हमारे पिताजी ने आपको और आपको भक्तों को बहुत सताया है, इनको सुगति हो जाए, देखो अपना कुछ नहीं। भगवान ने कहा जी मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे जैसे वैष्णव के कुल में यदि कोई आए उत्तम भागवत तो 21 पीढ़ी के उसके माता पिता सबका उद्धार हो जाए, वो हो जाएगा। और यदि मध्यम कोटि का हो तो 14 पीढ़ी का, और साधारण जिसने भक्ति आरंभ किया है सदगुरु पदाश्रय करके शुद्ध रूप में भजन कर रहा है तो उसके सात पुरुष ऐसे ही बिना किसी कहे हुए तर जाएंगे, इसको याद रखना। यदि ऐसा कोई किया तो प्रहलाद महाराज जी तो उत्तम भागवत है, इसलिए वो कहते हैं तुम्हारे पीढ़ी में 21 पीढ़ी तक जो माता पिता इत्यादि आएंगे उनका उद्धार कर दिया, ये याद रखो, तुम दूसरा कुछ वर मांगो। प्रहलाद महाराज ने अब क्या वर मांगू? हाँ एक बार हमको मांगना है, ये दीजिए आपको छोड़ करके संसार वाले भूल करके माया में लगे हुए हैं, बड़े दुख भोग रहे हैं, बुढ़ापे में तो बड़े दुख भोगते हैं। और यदि मनुष्य जीवन का अच्छी तरह से सदुपयोग नहीं किया तो कुकर गधे सुकर होंगे, उनकी बड़ी दुर्गति होगी, इसलिए उनकी दुर्गति ना हो उनका सारा पाप मैं ले लूं और मैं जन्म जन्मांतर तक बस भोगता ही रह जाऊं और उनका उद्धार कर, ऐसा कोई मांगेगा? भगवान ने कहा जे तू जीत गया मैं हार गया, हमारी ये कथाओं को जो सुनेगा कहेगा उनको ही संभव, फिर खुलेगा क्या? इतना 10 मिनट तो ठीक, उन्हीं का उद्धार होगा। अच्छा ठीक, तो प्रहलाद महाराज जी कैसे हैं? उत्तम भागवत कैसे उसका उदाहरण दिया गया है, जो भगवान के अंदर में समस्त सारे विश्व को और सारे प्राणियों को जो दर्शन करते हैं, और जो समस्त प्राणियों में भगवान का दर्शन करते हैं, चींटी में भी भगवान को देखते हैं, गधे में भी भगवान को देखते हैं, देखते हैं हमारा स्वरूप, ये भगवान के सभी दास दासी हैं, भगवान को भूल करके ही आए हैं, तो अभी भगवान के दास ही तो हैं, सबके अंदर में भगवान को प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, नृसिंह देव का समस्त प्राणियों में वे दर्शन करते हैं अपने भगवान को, और समस्त प्राणियों में अपने भगवान को, और भगवान में सारे प्राणियों को दर्शन करते हैं, ये उत्तम भागवत का अतिरिक्त दूसरा नहीं कर सकता। तो भी उनको ज्ञानी भक्त कहते हैं। ज्ञानी भक्त माने क्या? एक ज्ञानी होता है, एक ज्ञानी भक्त होता है। ज्ञानी माने जो भगवान का रूप नहीं मानता, उनका गुण नहीं मानता, उनकी लीलाओं को माइक कहता है, ठाकुर जी की मूर्ति को पत्थर की मूर्ति कहते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं किंतु अभी दर्शन नहीं हो पाता ठाकुर जी के रूप में, तो अभी कुछ अच्छा है। जो आरोप तो हम करते हैं, जो ठाकुर जी हैं हम नहीं देख सकते, हम कहेंगे ये जयपुर का बनाया हुआ है या कहां का बनाया हुआ है, ऐसा नहीं। ठाकुर जी किंतु अभी दर्शन नहीं हमको मिल। जिस समय ठाकुर जी हम लोगों को दर्शन का, अभी हम लोग देख रहे हैं इसलिए दिख नहीं रहे, जिस समय ये अपना छोड़ना देख छोड़ देंगे और देखेंगे गोविंद जी की नजर हमारे ऊपर में पड़ जाए, उस समय वो दर्शन दे सकते हैं। इसी भावना से आप लोग आएंगे, दर्शन मत कर, खबरदार आइए करने, दर्शन वो हमारा हमको देखे, उनकी नजर पड़ जाए इसलिए हम आते हैं। नहीं तो सब समय उनको पत्थर के रूप में और या दूसरे रूप में हम देखेंगे, ये दर्शन का तरीका नहीं। उनसे प्रार्थना कीजिए, प्रभो आप दर्शन, आपका उनका दर्शन हो जाए, सबका दर्शन हो जाएगा। प्रहलाद महाराज जी ऐसे उत्तम भागवतों में से, सब जगह भगवान का दर्शन करते हैं, किंतु उनको भक्त इसलिए कहते हैं भगवान का तो दर्शन करते हैं ये तो ठीक है, किंतु जब नृसिंह भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कौन सी सेवा की? उनके भगवान को भूख नहीं लगती, ये बड़ी मुश्किल की बात है, इसलिए रसोई तो बन नहीं सकती उनके लिए, क्योंकि खाते नहीं, वो तो सर्वव्यापी हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होता, उनके पैरों में थकावट नहीं होती, कृष्ण रास में चलते चलते नित्य करते हुए थक जाते हैं, किंतु नृसिंह जी क्या करते हैं? उनके भगवान थकते भी नहीं है इसलिए पैर भी दबा नहीं सकते, इसलिए नृसिंह भगवान की कोई सेवा नहीं कर सकते, बल्कि नृसिंह ही पुत्र जैसा उनका लालन पालन करेंगे, इसलिए वो भक्त तो हैं, महाभागवत भी हैं, किंतु वो कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकते। सेवा के ऊपर में सब कुछ निर्भर करता है। कोई गुरु कहे ये गुरु जी हमारे भगवान हैं, उनको भूख नहीं है, उनको पंखे की जरूरत नहीं है, उनको पानी की जरूरत नहीं है, वो सेवक क्या कर सकता है अपने गुरु जी? कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रहलाद महाराज जी उत्तम कोटि के भागवत होने पर भी सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं, किंतु भगवान को क्या सेवा करेंगे नहीं कर सके, इसलिए उनकी अपेक्षा हनुमान जी श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? ये प्रेमी भक्त हैं, वो तो ज्ञानी भक्त हैं। सर्वत्र यदि कहीं प्रहलाद महाराज जी वृंदावन में पहुंच गए और यशोदा जी की गोद में देखें, या नारद जी भी जाएं, उद्धव भी जाएं, भीष्म पितामह जाएं, सनक सनंदन जाएं और वहां पर बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, यशोदा जी उनको कुछ खिला रही हैं, तो ये कहेंगे यशोदा तो बड़ी भाग्य, बड़ी भाग्यवान है, कृष्ण तेरे गोदी में खेल रहे हैं, किंतु ये कृष्ण है जानती हो कौन है? ये परब्रह्म है, ऐश्वर्य शक्ति से भरे पड़े हैं, अघटन घटनी पटियसी शक्ति वाले हैं, वो खुद ही खिलाने नहीं जाएंगे, इसलिए प्रेमी भक्त उनसे श्रेष्ठ हैं। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी क्या करते हैं? खाने के लिए भगवान को चारों तरफ से फल मूल संग्रह करके लाते हैं जब वनवास में हैं। सीता जी की चोरी हो गई तो सीता जी के लिए क्या किया? राम जी की इच्छा समझ करके सात समुंदर पार हो करके रावण का ध्वंस करके उसके सोने के भवन और लंका को जला करके सीता जी से निवेदन किया, मैया हमारे पीठ पर बैठ जाओ और राम के यहां ले जाऊं। सीता जी ने कहा बेटा तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है, किंतु राम ही जब खुद आएंगे तब मैं उनके साथ चलूंगी, अभी तेरे पीठ पर नहीं आऊं। राम को आने दे, उनको बुला करके ले आओ, जब आएंगे रावण का भी तभी केवल लंका जली है, अभी पूरी तरह से सभी लोग नहीं जल पाए, उसका क्या फल होता है ये दिखलाना है, इसलिए सीता जी नहीं गए, लक्ष्य उन्होंने किया। एक समय की बात है, हनुमान जी रामचंद्र जी के साथ में लौट करके राजधानी अपनी अयोध्या में आए। सीता जी माता जी श्रृंगार कर रही, श्रृंगार में सबसे पहला है सिंदूर लगाना, यही महिलाओं का सौभाग्य है। तो वो अपने स्नानागार में स्नान करके और सिंदूर भर रही, इतने में कहां से नटखट हनुमान आ गया। अरे मैया तू क्या कर रही है, बेटा सुहाग भर रही, ये लाल रंग यहां पर लगा रही थी उसको सुहाग कहते हैं, तो वो सुहाग भर रही। तो हनुमान जी ने कहा कि ये सुहाग से क्या होता है, हमारे पति सब समय जीवित रहे, मैं कभी विधवा नहीं हूं इसलिए इसे लगा रहे, हमारे पति सब समय चिरजीवी और चिर सुखी है। हनुमान जी अच्छी बात है, मैया स्नान करके और चली गई निकल करके। हनुमान जी घुस गए उस स्नानागार में और उसमें पूरे डब्बे में उन्होंने तेल लगा दिया, पूरा लगाया और लगा करके पूरे अंगों में उन्होंने पोत दिया, इसलिए हनुमान जी को सिंदूर लगता है। लगा करके क्या किया, रामचंद्र जी की सभा में पहुंचे, उसको देख करके राम सीता सब लोग हंसने लग गए, सारी सभा। रामचंद्र जी पूछा, अरे बेटा ये क्या कर दिया, सीता जी भी हंस रही, ये देखो। तो जब रामचंद्र जी ने पूछा ये क्या किया, मैंने सुहाग लगाया। किस लिए सुहाग लगाया, कि आप चिर जीवन जीवी रहे और सुखी रहे, आप कभी मृत्यु ना हो। वाह मेरे लिए लगाया, हाँ क्यों लगाया, अरे मैया लगा रही थी यहां पर, केवल सिंदूर लगाने से यदि आप इतने चिर जीवी हो सकते हैं, सारे शरीर में पोत लेने से तो इससे बहुत अधिक आप चिर जीवी रहेंगे। यह हनुमान जी की सेवा, प्रहलाद महाराज जी करेंगे ऐसी सेवा नहीं कर सकते। एक समय की बात है, अब दो मिनट होगा तो पांच मिनट है, अच्छा। किसी समय रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान, हनुमान जी प्रत्येक सेवा में उपस्थित रहते, दिन रात उन्हीं की सेवा में लग रहे, एक क्षण भी बिना राम की सेवा के नहीं बीतता। पानी देने में, चमट डुलाने में, इधर करने में, उधर करने में, कभी सवारी की जरूरत हो तो क्या करते, राम लक्ष्मण दोनों बैठ जाते, परकोटे की जरूरत होती तो अपने पूंछ से किला बना देते, सिंहासन की जरूरत होती खुद ही बैठ जाते। एक समय में भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी और सीता जी चारों मिल करके बातचीत करने लगे, ये हनुमान जब से आया हमारी सब सेवाएं छीन ली, अब दिन रात कोई सेवा नहीं करने देता, ऐसा हम लोग करें ये सब दिन और रात की 24 घंटों की जो सेवा है वो हम लोग बांट लें, और बांट करके इसको एक मिनट की सेवा न दें, हम ही लोग सब सेवाएं। उन्होंने सब सेवा बांट ली और उस दिन से हनुमान जी को कोई सेवा मिली नहीं। हनुमान जी व्याकुल हो गए, बड़े व्याकुल हो गए, कैसे करूं क्या करूं। तो वो इन चारों के पास में गए जहां रामचंद्र जी बैठे थे, ये लोग सेवा कर रहे थे। उन्होंने कहा जैसे प्रभु हम अब तो कोई सेवा हमको है नहीं, हमको कुछ सेवा मिलनी चाहिए तो मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं इन लोगों से कहता हूं कि हमको कोई सेवा दे। उन्होंने कहा जी हम सेवा नहीं देंगे, तुमने बहुत सेवा कर लिया। हनुमान जी ने कहा जी एक बात करो, राम को कभी जभाई आ सकती है, इसलिए मैं चुटकी बजाने का काम करूंगा, जब इनको जम्भाई आएगी तभी मैं चुटकी बजाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी राम को तो कभी जीवन में जम्भाई आई नहीं, इसलिए सेवा दे दी जाए, कभी वो उनको जम्भाई नहीं। इसी में हनुमान जी चुटकी बजाने लगे और जब चुटकी बजाने उनको जम्भाई आने लगी, अब वो खाना पीना भूल करके दिन रात चुटकी बजाया करे, जाने कब उनको जम्भाई आएगी, और सब समय जम्भाई के मारे उनकी सारी सेवा एकदम पूरी तरफ से ठप हो गई, कुछ सेवा न कर सके। अंत में हनुमान जी के पास में पहुंचे, भैया तुम सेवा करो, हम भी करें, मिलजुल करके करें, अब से तुम चुटकी मत बजाओ, नहीं तो उनको नींद नहीं आएगी, कोई सेवा की जरूरत नहीं होगी, तो फिर न जाने क्या हो जाएगा, हम भी मरेंगे वो भी मरेंगे। अंत में हनुमान जी को सेवा देनी पड़ी। ऐसे हनुमान जी प्रेमी सेवक है। बोलो हनुमान जी की, बजरंग बली हनुमान की।